नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों के लिए दूसरी बार जुर्माने की सजा का सामना कर रही गूगल इंडिया ने बुधवार को कहा कि वह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश का आंकलन कर रही है, जिसके बाद वह अपने अगले कदमों पर विचार करेगी। कंपनी ने यह भी कहा कि उपयोगकर्ताओं और डेवलपर के लिए उसकी प्रतिबद्धता बनी हुई है। CCI ने मंगलवार को गूगल पर 936.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। ये जुर्माना प्ले स्टोर की नीतियों के संबंध में अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए लगाया गया था। CCI ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि प्ले स्टोर नीतियों में अपने दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 936.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने के अलावा CCI ने कहा कि गूगल को ऐप डेवलपर्स को ऐप खरीदने के लिए किसी भी तीसरे पक्ष के बिलिंग भुगतान प्रसंस्करण सेवाओं का उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। इससे पहले नियामक ने 20 अक्टूबर को एंड्रॉइड मोबाइल उपकरणों के संबंध में कई बाजारों में अपने दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। सरकार देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम की वृद्धि को पूर्ण क्षमता हासिल करने और निवेशकों को बेहतर रिटर्न के लिए अपनी उत्पाद रणनीति में बदलाव के लिए प्रेरित कर रही है। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। LIC 17 मई को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हुई थी। तब से कंपनी का शेयर अपने निर्गम मूल्य 949 रुपए से काफी नीचे आ चुका है। कंपनी का शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 872 रुपए के भाव पर सूचीबद्ध हुआ था। मंगलवार को कंपनी का शेयर 595.50 रुपए पर बंद हुआ। हालांकि विदेशी ब्रोकरेज कंपनियां LIC के शेयर को लेकर आशावादी हैं। ब्रोकरेज कंपनियों ने अगले साल के लिए कंपनी के शेयर का लक्ष्य काफी ऊंचा तय किया है। सिटी ने 14 अक्टूबर को एक शोध रिपोर्ट में LIC के शेयर के लिए 1,000 रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया। रिपोर्ट में कहा गया कि LIC परिपक्व वैश्विक कंपनियों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। आवास ऋण पर ब्याज दरें बढ़ने और संपत्ति की कीमतों में भी बढ़ोतरी होने के बावजूद आवास की मांग सभी मूल्य श्रेणियों में मजबूत बनी हुई है और देश के 7 प्रमुख शहरों में इस साल आवास बिक्री 3.6 लाख इकाई के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच सकती है। संपत्ति सलाहकार NROC ने ये जानकारी दी। इससे पहले देश के 7 प्रमुख शहरों यानी दिल्ली NCR, मुंबई महानगरीय क्षेत्र, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में सर्वाधिक 3,42,980 आवासों की बिक्री 2014 में हुई थी। NROC के आंकड़े के मुताबिक चालू कैलेंडर वर्ष के दौरान जनवरी से सितंबर के बीच आवासीय इकाइयों की बिक्री का आंकड़ा 2,72,710 पर पहुंच गया, जो कोविड से पहले के वर्ष 2019 की बिक्री के आंकड़े के पार चला गया, जब 2,61,360 इकाइयों की बिक्री हुई थी। इस वर्ष बिक्री आंकड़ा 3.6 लाख इकाइयों तक पहुंचने का अनुमान जताते हुए संपत्ति परामर्शदाता ने कहा है कि आवास ऋण पर ब्याज दर 6.5% से बढ़ाकर करीब 8.5% हो जाने पर भी आवास की मांग त्योहारों के दौरान मजबूत बनी रहेगी। अस्पतालों का परिचालन और प्रबंधन करने वाली कंपनी ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड का IPO 3 नवंबर से 7 नवंबर तक सार्वजनिक सदस्यता के लिए खुलेगा। मसौदा दस्तावेजों में ये जानकारी दी गई। मर्चेंट बुकिंग सूत्रों के मुताबिक IPO का आकार करीब 2,200 करोड़ रुपए होगा। IPO में 500 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा इसमें 5.08 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश भी शामिल है। OFS के तहत निजी इक्विटी कंपनी कलाइल ग्रुप से संबंधित इकाई अनंत इन्वेस्टमेंट्स और सुनील सचदेवा शेयरों की बिक्री करेंगे। ग्लोबल हेल्थ में अनंत इन्वेस्टमेंट्स की 25.64% हिस्सेदारी है, वहीं सचदेवा की इसमें 13.41% हिस्सेदारी है। नए निर्गम से प्राप्त राशि का उपयोग ऋण और सामान्य कारोबार उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। ग्लोबल हेल्थ की स्थापना जाने माने चिकित्सक नरेश त्रेहन ने की थी। ये भारत के उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में एक प्रमुख निजी मल्टी स्पेशलिटी तृतीय देखभाल प्रदाता है। ग्लोबल हेल्थ गुरुग्राम, इंदौर, रांची, लखनऊ और पटना में मेदांता ब्रांड के तहत 5 अस्पतालों का एक नेटवर्क संचालित करती है। रियल एस्टेट कंपनी DLF की इकाई DCCDL की कार्यालय किराए से आय सितंबर तिमाही के दौरान 14% बढ़कर 801 करोड़ रुपए हो गई। कंपनी ने बताया कि इस दौरान खुदरा संपत्तियों से आय 54% बढ़कर 184 करोड़ रुपए रही। DLF साइबर सिटी डेवलपर्स लिमिटेड DLF लिमिटेड और सिंगापुर के सॉवरेन संपदा कोष GIC का संयुक्त उद्यम है। इसमें DLF की करीब 67% हिस्सेदारी है। DLF ने संयुक्त उद्यम फर्म के परिचालन एवं वित्तीय प्रदर्शन के बारे में जानकारी देते हुए एक निवेशक प्रस्तुति में बताया कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान DCCDL की कार्यालय किराया आय 14% बढ़कर 801 करोड़ रुपए हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 701 करोड़ रुपए थी। कंपनी की खुदरा आय 120 करोड़ रुपए से 54% बढ़कर 184 करोड़ रुपए हो गई। समीक्षाधीन अवधि में कुल किराया आय 20% बढ़कर 986 करोड़ रुपए हो गई, जो एक साल पहले की इसी अवधि में 821 करोड़ रुपए थी। प्रस्तुति में कहा गया कि किराया आय में सालाना आधार पर 20% की वृद्धि हुई, जो खुदरा क्षेत्र में मजबूत पुनरुद्धार से प्रेरित है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा कंपनी मेडीबैंक ने बुधवार को कहा कि एक साइबर अपराधी ने उसके सभी 40 लाख ग्राहकों का निजी डेटा हैक कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ऐसा कानून लेकर आई है जिसके तहत उन कंपनियों पर अब अधिक जुर्माना लगेगा जो अपने ग्राहकों की निजी जानकारियों की रक्षा नहीं कर पाएंगी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।